शंकर शंभु।
यस सर।
अखबार में मेरा बयान छापने के लिए कोई खास खबर?
यस सर।
बोलो।
काजलपुर गांव में ऊंची जाति वालों ने हरिजनों पर हमला कर दिया,
चार हरिजन भी मारे गए।
क्या मंत्री जी ने उस जगह का दौरा किया?
अभी तक तो नहीं किया, मगर करने वाले हैं।
हेलीकॉप्टर से जाएंगे या रेलगाड़ी से जाएंगे?
कुछ पता नहीं साहब, लेकिन वहाँ का मामला तो राख में छुपी हुई चिंगारियों के ढेर की तरह है।
तो फौरन मेरा डबल स्टेटमेंट लिखो, अगर ये बात हो तो वो छापना और वो हो तो ये छापना, अखबार हमारी तो है ना।
यस सर।
मान लो कि मंत्री जी हेलीकॉप्टर से गए तो छापना कि एक तरफ देश की धरती पर गरीब जनता के साथ अत्याचार हो रहा है और दूसरी तरफ ये महाशय गरीब जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल करते हुए आसमान की सैर करते हुए उनको देखने जाते हैं। अरे ये कैसा कौम का हमदर्द है, ये कैसा जनता का लीडर है।
अगर मंत्री जी ने जनता का पैसा बर्बाद नहीं किया और वो ट्रेन से चले गए तो
ये छापना कि एक तरफ गरीब जनता अपनी जानें बचाते हुए खेतों में भागती फिर रही है और दूसरी तरफ ये माश है जिनके लिए गरीब जनता ने अपनी गाड़ी कमाई से हेलीकॉप्टर खरीद के रखा है, उस पर बैठकर फौरन जाए वारदात पर पहुंचने के बजाय ये शख्स ट्रेन से 8 घंटा लेट पहुंचता है। अरे ये कैसा कौम का हमदर्द है, ये कैसा जनता का लीडर है।
मतलब ये कि वो जैसे भी जाए बुराई करना, नुक्ताचीनी करना, ये हमारा काम है ना सर।
जाहिर बात है गधो, वोट देकर ये जनता तो हमें कभी इलेक्शन में जिताएगी नहीं, इसीलिए इस चार दीवारी में बैठकर अगर हम दो मुंह वाला बयान न दें तो हमारा लेवल गिर जाएगा और ये जनता हमें भूल जाएगी।
चौरंगी लाल जी।
अरे वाह, मैं जिस तरह डबल बयान देता हूँ उसी तरह ये दो भाई एक साथ चले आ रहे हैं। आओ नाश्ता करो।
अरे नाश्ता छोड़िए, फौरन अपनी तीसरी आंख खोलिए वरना मेरा इकलौता बेटा मुसीबत में फंस जाएगा।
खोलते हैं। पूरा वाकया मुझे 3 शब्दों में सुनाइए।
चौरंगी लाल जी, हमारी फैक्ट्री के बगल वाली जमीन की खरीदारी में कुछ झगड़ा हुआ और उस सिलसिले में उस नई इंस्पेक्टर झांसी रानी ने मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया
और लॉरी भी जब्त कर ली सबूत के तौर पर।
अच्छा, लगता है ये झांसी रानी अपने नाम की तरह कोई बहादुर औरत है।
अरे हम यहाँ उसकी तारीफ सुनने नहीं आए हैं, बल्कि ये अर्ज करने आए हैं कि आप किसी तरह इस मामले में दखल देकर मेरे बेटे को छुड़ा लीजिए, प्लीज।
कैलाशनाथ, मैं स्टेट लेवल का आदमी हूँ, ये म्यूनिसपालिटी के लेवल पे कहाँ उतार रहे हो मुझको। आदमी भले गिर जाए मगर उसका लेवल नहीं गिरना चाहिए।
एक चौरंगी लाल जी, सिर्फ एक बार, इस बार आपको हमारे लिए अपने लेवल से उतरना ही पड़ेगा, हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना ही पड़ेगा।
नहीं 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 नहीं, पुलिस स्टेशन मत जाइए, इस शहर के जितने भी गलत धंधे करने वाले लोग हैं उन सब के फोटो वहाँ लगे हुए हैं, कहीं आपका भी।
शंकर, मुरत कर।
मैं अभी सुई धागा मंगाकर अपने होंठ से लेता हूँ।
चलिए कैलाशनाथ जी, आप अपने आदमी, इसलिए मैं अपने लेवल से उतर रहा हूँ और आपके साथ पुलिस स्टेशन चल रहा हूँ।
थैंक यू वेरी मच चौरंगी लाल जी।
काम कीजिए, एक 25,000 का चेक जरा मेरे पीए को देना।
25,000 रुपया? किसी को रिश्वत देनी है क्या?
जी, कभी भूल कर इस घर में रिश्वत का नाम मत दीजिएगा, ये तो मैं गरीबों की मदद के लिए फंड इकट्ठा करता हूँ, इसका नाम है जनता सेवा फंड।
जनता सेवा? समझ गया, मैं कल सुबह आपको चेक करके भिजवा दूंगा, इसमें बुरा क्या हुई।
शंकर शंभु।
यस सर।
नमस्ते इंस्पेक्टर साहब।
नमस्ते।
मेरा नाम
चौरंगी लाल दो मुखिया कैलाशनाथ और ये इनके छोटे भाई महेंद्र नाथ।
सर मैंने सही कहा था, लगता है आपके फोटो यहाँ पहुंच गए हैं।
फरमाइए कैसे आना हुआ।
हो सकता है हरी को गिरफ्तार करते वक्त आपको ये ना मालूम हो कि वो मेरा बेटा है।
हो सकता है लॉरी पकड़ते समय आपको ये ना मालूम हो कि वो हमारी लॉरी है।
हो सकता है, अब मालूम हो चुका है, इसीलिए उसे छोड़ दीजिए।
तो यहाँ क्यों आए हैं, कोर्ट में मिलिए।
कोर्ट का नाम लेकर हमें धमकाने की कोशिश मत कीजिए, घर की तरह मैं कोर्ट रोज आता जाता रहता
हूं। मिस्टर चौरंगीलाल तो मुखिया, नो स्मोकिंग हियर।
झांसी
रानी।
ओके रानी सही, मगर अपने लेवल से बढ़ के बात मत करो।
शट अप एंड गेट आउट।
इंस्पेक्टर साहिबा, इन्हें XMLC समझकर इनसे दुश्मनी मोल ना लो, वरना शहर के तमाम सिनेमा घरों में तुम्हारी बदनामी के स्लाइड्स दिखा देंगे।
गैर कानूनी तौर पर तुमने मेरे भतीजे को गिरफ्तार किया, हमारी लॉरी पर कब्जा किया, ये ऐसा स्टेटमेंट अपने अखबार में छाप कर तुम्हारे लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर देंगे।
इतना आसान नहीं है, मैंने सबूत के साथ केस फाइल किया है।
लेकिन गवाह तुम्हारी खाकी वर्दी में लगी कांजी की तरह है, जिस तरह बगैर कांजी के तुम्हारी वर्दी ढीली पड़ जाती है उसी तरह बगैर गवाह के तुम्हारा केस भी ढीला पड़ जाता है।
मेरे पास एक नहीं, 5 गवाह है।
5 गवाह है?
यस।
5 गवाह है?
यस।
ये लोग जो तुम्हें फूल मालाएं पहना कर तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तुम उन हाथों को तोहफे में हथकड़ियां पहनाना चाहती हो, तुम्हें तो इसके बदले।
चौरंगी लाल जी जोशी मत आइए, शांत हो जाइए प्लीज, चलिए हम जमानत दे देते हैं।
ओके।
सर, इस माला का क्या करेंगे?
संभाल के रखो, उसकी अर्थी पर चढ़ाने के काम आएगी। मैं जैसे दुनिया हुक्म का बादशाह कहती है, उसे उस चिड़ी के गुलाम सर्कल इंस्पेक्टर ने घास के तिनके की तरह उठाकर फेंक दिया।
5 गवाहों के सहारे वो मेरे बेटे को सजा दिलवाना चाहती है।
नहीं, वो सजा नहीं दिलवा सकती। उन 5 गवाहों को सोई हुई हालत में हमारा आदमी हमेशा के लिए गहरी नींद सुला देगा। रंगा, लॉरी स्टार्ट करो।
सर, सर, हम आपको खुश करने वाली 2 भयानक खबरें लाए हैं।
फौरन सुनाई जाए।
जालनपुर में सूखा पड़ा है, पीने के लिए 1 घूंट पानी नहीं है, खेत मुरझा रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, लोग प्यासे तड़प रहे हैं।
आहा, लगता है गुलाब जामुन खिला दिया। और दूसरी खबर?
नालीपुर गांव में जबरदस्त बाढ़ आई है, जानवर बह गए और लोगों के घर उजड़ गए।
वाह, एक तरफ सूखा है, लोग पानी के लिए मर रहे हैं, और दूसरी तरफ इतना पानी है कि लोग डूब के मर रहे हैं। मगर मंत्री जी पहले कहां जाने वाले हैं, सूखे इलाके में या बाढ़ वाले इलाके में?
कुछ पता नहीं।
तो फौरन मेरा डबल स्टेटमेंट लिखो, अगर ये बात हो तो वो बयान छापना और वो बात हो तो ये बयान छापना। अखबार अपना ही तो है।
यस सर।
अगर मंत्री जी पहले सूखे वाले इलाके में जाएं तो छापना, एक तरफ गरीब जनता सैलाब में बर्बाद हो रही है और दूसरी तरफ मंत्री महोदय उनकी मदद करने के बजाय जालनपुर जा रहे हैं, जहाँ न पानी है न मौत का सैलाब है, शायद उनको खुद के डूब जाने का डर है। अरे ये कैसा कौम का हमदर्द है, ये कैसा जनता का लीडर है। अगर मंत्री महोदय पहले बाढ़ वाले इलाके में जाएं, तो लिखना कि एक तरफ कौम पानी के कतरे कतरे को मोहताज है, पीने का पानी नहीं है, और ये मंत्री महोदय उनकी आवाज सुनने के बजाय नालीपुर जा रहे हैं, शायद उनको खुद प्यास की आग में जल जाने का डर है। अरे ये कैसा कौम का हमदर्द है, ये कैसा जनता का लीडर है।
चौरंगी लाल जी, अरे चौरंगी लाल जी, चौरंगी लाल जी।
क्या बात है, ये अचानक चौरंगी की चौखट को चूमने के लिए कैसे आना हुआ?
क्या करूं, मेरे भाई को झांसी ने गिरफ्तार कर लिया है।
किस जुर्म में?
वो वैश्याओं का एक अड्डा चलाता था, उस पर रेड पड़ी और वो पकड़ा गया।
उसने अंकल के पैर पर गोली मारकर उन्हें जख्मी भी कर दिया।
आपको एक बार फिर अपने लेवल से नीचे उतरकर ऊपर वालों को फोन करना पड़ेगा, प्लीज।
देखो, कहीं डाका डालो, किसी का खून करो तो मैं बचा सकता हूँ, मगर औरत की इज्जत पर डाका डालोगे तो मैं उस केस में हाथ नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरा हाथ जल जाएगा। अगर तुम चाहो तो मैं उसकी सजा कम करवा सकता हूँ।
नहीं नहीं, उसे किस तरह छुड़वा लीजिए चौरंगी लाल जी।
देखो,
पिछली बार जो मुझे 25,000 का चेक देना था, मैं वो साथ ले आया हूँ, उसे स्वीकार कीजिए चौरंगी लाल जी।
नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई तुम पर शक करता हूँ, ये विश्वास नहीं है, पूरा है। तो एक काम करो, कल एक 25,000 का चेक और भिजवा देना।
क्यों?
वो क्या है कि बंबई में गंगा नदी की बाढ़ आई है, उसके लिए मैं फंड इकट्ठा कर रहा हूँ।
बंबई में गंगा नदी की बाढ़? लेकिन बंबई में गंगा नदी की बाढ़ कैसे आ सकती है? आ सकती है। ठीक है, आप सुबह अपना आदमी भेज दीजिए, मैं चेक भिजवा दूंगा।
झांसी,
झांसी रानी।
ओके, रानी सही, लेकिन अगर तुम अपने लेवल से बढ़कर काम करोगी
तो क्या करेंगे आप?
अपने फौलादी पैरों तले चूंटी की तरह मसल के रख दूंगा।
मिस्टर चौरंगी लाल तो मुखिया,
इनसे मत उलझना, लोग इन्हें खूनी भेड़िया कहते हैं, बोटी बोटी करके चौराहे पे बिखेर देंगे।
शट अप।
आवाज और टोन तो अच्छी है, शक्ल भी अच्छी होगी।
अरे उसकी टोन को मारो गोली, यहाँ पर स्टोन बरसाने का वक्त आ गया है। उसकी बीवी झांसी ने मेरे भाई को लंगड़ा बनाकर जेल भिजवा दिया, और अब मेरी फैक्ट्री को लंगड़ी बनाकर मुझे भी सड़क पर लाने के चक्कर में है। इस मामले अपनी टांग अड़ाइए आप।
ऐसे छोटे मोटे मामले में मैं अपनी टांग अड़ाऊंगा तो मेरा लेवल गिर जाएगा।
भैया प्लीज इनकी मदद कर दीजिए, वरना ये बेचारे बर्बाद हो जाएंगे।
वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं स्टेट लेवल का आदमी हूँ, उतर के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे आ सकता हूँ?
प्लीज भैया।
ओके, कैलाशनाथ।
चौरंगी जी,
मैं डायरेक्ट इस मामले में हाथ नहीं डालूंगा, मगर प्लान बता सकता हूँ।
बताइए ना, बताइए।
कल जब तुम अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी फैक्ट्री जाओगे, तो वो साला चंद्रशेखर गेट पे खड़ा होकर तुम्हारी गाड़ी को रोकने की कोशिश करेगा। तुम बेरहमी से उस पे गाड़ी चढ़ा देना, और अगर केस बने तो सारा इल्जाम ड्राइवर पे डाल देना। ओके,
करेक्ट। 1 तीर 2 निशाने, शेखर से भी छुटकारा मिल जाएगा और उस सर्किल इंस्पेक्टर झांसी से भी बदला ले लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।
क्या कहा? तुम्हारा भाई मेरी भतीजे से प्यार करता है?
हाँ, उतना प्यार करता है जितना एक नेता अपनी कुर्सी से प्यार करता है।
आओ रेनू, आओ।
क्या बात है अंकल?
कुछ नहीं रेनू, ये श्री चौरंगी लाल तो मुखिया हैं, और ये इनके छोटे भाई विक्रम लाल। तुम इन्हें जानती हो?
इनको तो नहीं जानती, लेकिन इनको तो बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। रवि नाम के स्टूडेंट ने कॉलेज में इनकी बहुत पिटाई की थी, तब इनको देखा था, और अभी कुछ रोज पहले ये बीच पर मार खाने वाले ही थे, उस वक्त भी इनको देखा था।
बस इतनी सी बात, भूल जाओ इसको, करीबी लोगों में से हैं। ये लड़का तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम अगर हाँ कह दो तो ये शादी करने को तैयार है।
सॉरी अंकल, वैसे छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन मैं कह दूं तो बेहतर है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। सॉरी चरंगीलाल जी, बाय।
वाह, कौन कहता है कि हिंदुस्तान बहुत पीछे, इस मामले में तो बहुत आगे। अच्छा
अब आप ही बताइए मैं क्या करूं।
जबरदस्ती शादी करवा दीजिए और क्या
है। कैसी बातें करते हैं दो मुखिया जी, वो मेरे सगे भाई की बेटी है जो इस वक्त जेल में है, ऐसे हालात में उसकी शादी कैसे करवा सकता हूँ। सॉरी।
अरे कोई मर्डर करने को थोड़ी कह रहा हूँ, शादी करवाने को कह रहा हूँ, और अगर तुम नहीं कर सकते तो मुझ पे छोड़ दो, अखबार में एक सिंगल स्टेटमेंट देके दोनों की जबरदस्ती शादी करवा सकता हूँ।
बुरे से बुरा आदमी भी जब अपनी बेटी की शादी करता है तो एक नेक लड़के से करना चाहता है चौरंगी लाल।
तो क्या मैं नालायक हूँ?
यही मेरी भतीजी ने बताया, अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं।
कैलाशनाथ, शिकारी कुत्ते की दुम से खेलना आसान है, मगर उसके जबड़े में हाथ डालना बहुत खतरनाक है, और तुम जानते हो कि मैं क्या
हूं? जानता हूं, तुम कल के XMLC हो और मैं आज का करोड़पति हूं।
ओके ओके शंकर।
यस सर।
गाड़ी तैयार है?
यस सर।
शंभू
जी हो।
ड्राइवर तैयार है?
जी हो।
इस घर को थूक थूक के भर दो और चलो।
Damn it! भैया, अगर रेनू से मेरी शादी नहीं हुई तो आपका लेवल गिर जाएगा।
किसी खतरनाक गुंडे को ललकारना या किसी पॉलिटिशियन को भड़काना, दोनों का एक ही अंजाम होता है, तबाही बर्बादी। अब देखना मैं कैलाशनाथ के घर में कैसी आग लगाता हूं।
हेलो।
नमस्ते इंस्पेक्टर साहब।
आप कौन बोल रहे हैं?
कानून की इज्जत करने वाला। आपके पति चंद्रशेखर लॉरी के नीचे आकर नहीं मरे थे, बल्कि उनका कत्ल किया गया था।
आपको कैसे मालूम?
फैक्ट्री का एक मामूली मजदूर सन्यासी राजा अचानक एक शराब की दुकान का मालिक कैसे बन गया? छानबीन कीजिए, खुद ब खुद पता चल जाएगा।
साहब, ये खून करने का प्लान बनाने वाले भी आप ही थे, और अब सर्कल इंस्पेक्टर को राज बताने वाले भी आप हैं। ये चक्कर क्या है?
ये चक्कर नहीं, चक्रव्यूह है। जब तक कैलाशनाथ का पूरा खानदान मुसीबतों के चक्कर में फंसा रहेगा, तब तक वो मेरे जूतों तले दबे हुए बिच्छू की तरह बेबस रहेगा, वरना मौका मिलते ही सबसे पहले मुझको डस लेगा, इतना हरामी है वो।
अच्छा, इसी डबल चालबाजी को राजनीति कहते हैं।
राजनीति का मतलब जानते हो? ये शैतान की डिक्शनरी का शब्द है। इस राजनीति के चार टुकड़े होते हैं, रा ज नी ती। रा से राक्षस की तरह, जैसे जनता को, न से नुकसान पहुंचाने वाला, और त से तिगड़मबाजी करने वाला, और इन चारों बातों में मैं शैतान का उस्ताद माना जाता हूं।
बाप रे बाप, इससे तो अच्छा है इंसान किसी वेश्या के दरवाजे पर जाकर भीख मांग ले, मगर कभी भूल कर भी ऐसे पॉलिटिशियन का पीए न बने।
एक बात याद रखना, ये राज तुम्हारे और हमारे बीच में है, अगर कहीं फाश हो गया तो तुम्हारा पूरा खानदान यमराज की गोद में बैठा हुआ नजर आएगा, याद रखना। महेंद्र बाबू, अरे ये क्या, तुम यहाँ चले आए? मैं जनता का जबरदस्त जुलूस लेके तुम्हारे स्वागत के लिए सेंट्रल जेल गया था, और तुम यहाँ चले आए? खैर कोई बात नहीं, माला कहाँ है, लाओ स्वागतम।
क्यों चौरंगी लाल दो मुखिया, क्या बात है?
वही पुरानी बात, उस रोज जब मैंने महेंद्रनाथ की बेटी का हाथ अपने भाई के लिए मांगा था तो तुमने इनकार कर दिया था, आज वही आवाज में महेंद्रनाथ के कानों तक पहुंचाने आया।
तो ये है इनके आने का मकसद।
बड़े भैया ने जो कह दिया समझ लो वो मैंने कह दिया।
चौरंगी लाल, हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि तुम इस किस्से को भूल जाओ।
कोशिश तो बहुत की, लेकिन ये बात दिल की दीवार पर उद्घाटन के पत्थर की तरह खुद की रह गई है, भुलाई नहीं जाती।
क्यों?
क्योंकि जब दो शरीफ आदमी अलग होते हैं तो बड़ी आसानी से दोनों अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन जब दो बुरे आदमी अलग होते हैं तो सारी जिंदगी एक दूसरे के लिए कब्रें खोदते रह जाते हैं।
तुमने हमारे लिए जो गड्ढा खोदा था उसमें से हम आसानी से बचकर बाहर निकल आए हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि झांसी रानी को खून के बारे में बताकर भड़काने वाले बड़े आदमी आप ही थे।
नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं महाप्रभु, मैंने तो उसी दिन से अपने होश लिए थे, मुझे कुछ नहीं मालूम।
मैंने तो उस दिन से मुंह भी नहीं खोला।
कैलाशनाथ
बोलो।
मैं वो हूँ जिसने मर्डर्स कराए, दंगे फसाद कराए, जब उनसे नियत भर गई तो राजनीति में चला है। मैंने 17 घाट का पानी पिया है, मुझे भड़काने की कोशिश मत करो।
अगर मैं तुम्हें भड़का भी दूं चौरंगी, तब भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
अच्छा हाँ। तो वो कागज जिस पर तुमने और चंद्रशेखर ने दस्तखत किए थे वो कहाँ है, कुछ मालूम?
सन्यासी राजा उन कागजों को कब का फाड़ चुका है।
नहीं प्यारे, सन्यासी राजा उन कागजों को मेरे हाथों 50,000 में बेच चुका है। मुंह मत खोलो, मैं तुम्हारी अतड़ियों की लंबाई पहले ही नाप चुका हूँ।
तुम उन कागजात का क्या करोगे?
सन्यासी राजा जेल में है ये तुम्हें मालूम है, और हम ये कागजात झांसी रानी को दे देंगे ये भी तुम्हें मालूम है।
सन्यासी गवाही ना दे तब भी वो कागजात तुम्हें फांसी पर लटकाने के लिए काफी है, ये भी तुम्हें मालूम है।
भाई चौरंगी लाल जी, समझ लीजिए ये आपके पाँव हैं, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ चौरंगी लाल जी।
पैर नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी भतीजे का हाथ चाहिए।
जरूर जरूर, आपके भाई के साथ ही मेरी भतीजी की शादी होगी। क्यों भैया?
जो आपकी मर्जी।
ये हुई ना बात,
तो चलो इसी बात पर एक गिलास बियर हो जाए।
और बियर, आई एम ऑलवेज रेडी माय डियर।
चीयर्स।
तुम ही खड़े रहो।
चौरंगी लाल तो मुखिया,
आप यहाँ क्या लेने आए हो? अपनी बेटी की शादी तो तुम गया और कर चुके हो।
चौरंगी लाल जी, हम तो अपनी रेनू का हाथ आपके भाई के हाथ में देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीच में वो बदमाश गिद्ध की तरह आया और झपटा मारकर हमसे हमारी बेटी ले गया और आपसे आपकी होने वाली बहू। उसने हमारा अपमान किया लेकिन आपके मुंह पर जूता मारा है, उसका बदला लो चौरंगी लाल जी, उसका बदला लो।
चौरंगी को जब कोई ललकारता है तो उसका खून चौराहे पे बहता हुआ नजर आता है। मैं उसका खून करवा डालूंगा।
नहीं, मेरी बेटी विधवा हो जाएगी।
शास्त्रों के अनुसार पति के मरने के 11 दिन बाद पत्नी विधवा होती है। अरे उसको तो मारकर हम 11 घंटे के अंदर अपने भाई से दोबारा उसकी शादी कर देंगे, और तुम्हारी बेटी के माथे पर दोबारा नई बिंदिया चमक उठेगी। क्यों छोटे?
मुझे मंजूर है भैया।
अगर हम जैसे बुरे आदमी इकट्ठा हो जाएं तो एक मामूली शरीफ आदमी को मारना कोई मुश्किल काम नहीं है। चलो मैदान जंग में और हमले की तैयारियां शुरू करो। चलो।
यस।
झांसी।
झांसी रानी।
ओके, हो सकता है तुम रानी हो मगर हम अंधेर नगरी के महाराजा हैं।
शट अप।
पावर मिल जाने के बाद जबान से तमीज की लगाम नहीं छूटनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहिबा, मुझे खबर मिली है कि तुमने कैलाशनाथ के बेटे और मेरे भाई को गिरफ्तार किया है। अगर तुमने फौरन इन्हें रिहा नहीं किया
तो क्या कर लोगे?
खून की नदियां बहा दूंगा।
तुम क्या समझते हो कि तुम खून बहाओगे और कानून हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखता रह जाएगा?
सुनाओ सर्कल इंस्पेक्टर साहिबा, बचपन में मेरी माँ ने जब पहली बार मुझे दूध पिलाया था तो साथ में शराफत नहीं सिखाई थी, बल्कि खून करने के नए अंदाज सिखाए थे, कानून की आंख में धूल झोंकने के नए नए तरीके सिखाए थे।
बको मत। अगर तुमने कानून की आंखों में धूल झोंकना माँ से बचपन में ही सीख लिया था तो मैंने तुम जैसे मुजरिमों को फांसी की तख्ते तक पहुंचाना माँ के पेट में ही सीख लिया था। तुम ऐसा करने की कोशिश तो करो, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या अंजाम करती हूँ।
महापुरुष उम्र 55 साल मगर हर साल बेकार, बिना किसी मकसद के, बिना किसी काम के गली गली घूमते रहते हैं। मुंह में जो आया बक दिया, हाथ में जो आया खा लिया, और जो मिला उससे बेकार की बातें करके उसका सर दुखा दिया। पुराने जमाने की बीए की डिग्री है। इनका नाम विश्व प्रताप ज्ञानदेव अग्निहोत्री है। इन्होंने जिंदगी में कभी काम किया ही नहीं, क्योंकि पहले तो इन्हें आज तक नौकरी नहीं मिली और जो मिली वो इन्हें पसंद नहीं आई।
ये चकली कैसे थी भाई?
2 के 20 पैसे।
2 का 20 पैसा?
जी।
हमारे बचपने में तो 10 पैसे में 1 मिलता था, अभी 20 पैसे में 2 मिलने लगे। क्या जमाना आ गया है यार। अच्छा काम करो, 2 चकली दो तुम।
ये लीजिए।
ये केला क्या भाव दिया?
20 पैसे का 1।
यार तुम बहुत सस्ता माल बेचते हो, घर में कुछ बचता होता है कि नहीं? एक काम करो, ये 2 चकली लो और 1 केला दो।
ये लीजिए।
हाँ, मीठा घर के बाहर का है क्या?
जी नहीं, वसई से मंगवाया।
अच्छा अच्छा अच्छा, केला मुंह में जाते ही एड्रेस बता रहा है कि वसई से आया है। वसई के केले बहुत अच्छे होते हैं, तुम भी रोज खाया करो, पेट साफ रहा करेगा। चलता हूँ।
अरे भाई साहब, पैसे?
कैसे पैसे?
केला नहीं खाया क्या?
तो चकली नहीं लिया क्या?
तो चकली के पैसे?
अरे तो चकली तो मैंने वापस कर डाली। अरे सीधा हिसाब है यार, चकली मैंने लेके लौटा दी, उसके बदले केला लिया, तो केले की कीमत चकली हुई, चकली तुम्हारे पास है तो केले की कीमत चकली और चकली की कीमत केला, तो बीच में पैसा कहाँ से आया? तुम सीधे से दुकान चलाओ ना, दुनिया लूट के ले जाएगी। तुम हिसाब करो, वापिस आता हूँ।
चकली केला, केला चकली, बीच में कुछ गड़बड़ा। अरे भाई साहब
आइए आइए, सेठ फकीरगंज जी आइए। वहाँ घर में हमारे बदनसीबी की लानत है, कभी हम उनको कभी अपने सड़े हुए घर को देखते हैं। बहुत दिनों बाद आए, कहाँ थे? जेल में थे क्या? हाउ डू यू डू?
डू, मैं इस मकान का मालिक हूँ।
अरे लानत भेजो मकान पर उसके मालिक पे। ए लड़के सुन, तेरा भाग के गली के नुक्कड़ पे जा, 10 पैसे की बीड़ी लेकर आ। तू
कौन सी लाऊं जी, घोड़ा छाप या बैल छाप?
अरे गधा छाप भी चलेगी, छाप कौन देखता है, जिसमें भाप निकलती वो लेकर जा।
मगर पैसे तो दीजिए।
अजीब बेवकूफ आदमी, मेरे पास पैसे होते तो तेरे को आगे भेजता। कैसी भी चक्कर चला के एडजस्ट करके ले आ जा।
एडजस्ट करके अभी लाता हूँ।
अबे ओ हराम खोर की औलाद, शर्म नहीं आती? बीड़ी लाने जा रहा
है? ये क्या, तुम्हारे लिए बीड़ी लाने के लिए यहाँ आया है?
तो फिर काहे के लिए आया?
मकान खाली करना है।
मगर तुम तो अपने मकान मेरे तो खाली क्यों कर रहे हो?
मुझे नहीं, तुम्हें खाली करना है।
हमें?
हाँ।
अरे नहीं, माना कि तुम जलील हो, लिचड़ हो, निकम्मे हो, खराब हो, मगर तुम्हारा मकान तो अच्छा है, तुम्हारा बदला मकान से क्यों ले? नहीं नहीं, हम लोग ये रहेंगे, तुम जाओ।
मैंने इस मकान को बेचने का फैसला कर दिया है।
ये तो बड़ी खुशी की बात है, चलो जान छूटी तुमसे, मगर किसी अच्छे आदमी को बेचना, अपने जैसे लिचड़ को मत बेचना। और जिससे बेचोगे उसे कहना क्या के हमसे मिल ले, फिर हम किराया उसको देंगे। चलो जाओ।
पिछले 20 बरस से आप सिर्फ 20 रुपए देते आ रहे हैं, एक पैसा भी नहीं बढ़ा। इस मकान में आने के बाद आपको 2 बच्चे पैदा हुए?
मुझे नहीं, मेरी बीवी को।
हाँ वही, अगर दोनों बच्चों के हिसाब से हर साल आप 1-1 रुपया बढ़ा देते तो अब तक कितना किराया बढ़ गया होता?
हाँ करेक्ट, बढ़ गया होता। और मेरे घर में जब मेरी पहली संतान ने जन्म लिया तो मुझे ऐसा लगा कि घर का एक मेंबर बढ़ गया है, तो फकीर चंद का 1 रुपया किराया बढ़ा देना चाहिए।
तो क्यों नहीं बढ़ाया?
मेरी माँ का देहांत हो गया, अब 1 साल में एक ने जन्म लिया तो दूसरा मर गया, तो मर्दुम शुमारी है ने जनगणना के हिसाब से, एक घटा दूसरा बढ़ा है? तो हिसाब वही का वही रह गया, इसलिए नहीं बढ़ाया।
क्या धर्मराज, उसके बाद जब तुम्हारा बेटा शामू पैदा हुआ था तो फिर क्यों नहीं बढ़ाया? उस वक्त कौन मरा था?
तुम्हारा बाप मर गया था।
क्या कहा?
याद करो जिस साल मेरा बेटा पैदा हुआ था उस साल तुम्हारा बाप मरा था कि नहीं? तो मैंने सोचा कि अगर मेरे घर में कोई बढ़ा तो तुम्हारे घर में घट गया, मतलब खर्चा घट गया, तो फिर किराया बढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए नहीं बढ़ाया।
इसीलिए तुम्हें कोई नौकरी नहीं देता, हमेशा उल्टी सीधी बातें करके दूसरों का दिमाग दिमक की तरह चाट डालते हो।
सेठ फकीर चंद कचरादार, अगर मुझे कोई नौकरी नहीं देता तो उसमें मेरी नहीं उन लोगों की बदकिस्मती है, जैसे आज तो मुझे मकान से निकाल रहे हो, तो उसमें मेरी नहीं तुम्हारी बदकिस्मती है। किसकी बदकिस्मती है? तुम्हारी बदकिस्मती है। किसकी बदकिस्मती है? तुम्हारी बदकिस्मती है।
अरे हाँ, हो गया, नमस्कार। हाथ चिपके हैं क्या? हाथ खोलिए, मतलब की बात मुंह से बोलिए। क्या है?
देखिए, करीब में जो कृष्ण भगवान का मंदिर है, मैं उसका धर्म करता हूँ।
क्या करता हूँ?
धर्म करता।
सेक्रेटरी हैं?
जी हाँ, मंदिर छोटा है और दर्शन के लिए रोजाना बहुत से लोग आते हैं, इसलिए हमने सोचा मंदिर को बड़ा बना दिया जाए ताकि श्रद्धा लेकर आने वाले लोगों के लिए तकलीफ ना हो। और अगले शुक्रवार को गोकुल अष्टमी का त्योहार भी है, इसलिए आपसे जो बन पड़े चंदा दे दीजिए, भगवान का काम है।
त्योहार?
जी।
और त्योहार में जो लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं उनका क्या हशर होता है, कभी देखा है? बच्चों समेत दिन भर धक्के खाते हुए, कड़क धूप में जलते हुए, फव्वारे की तरह पसीना बहाकर उसमें नहाते हुए जब लोग भगवान के दर्शन करने अंदर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि पीछे से अंदर आने का एक दरवाजा और भी है। पूछे ये क्या है तो कहते हैं शॉर्टकट, एक आदमी का 3 रुपया दो और पीछे के दरवाजे से अंदर आ जाओ, मतलब भगवान के घर में भी जाने के लिए पीछे के दरवाजे से अंदर जाना पड़ता है। क्यों, सिनेमा हॉल है क्या? ब्लैक में टिकट खरीद के अंदर जाना चाहिए, भगवान तो आराम से बंसरी बजाते अंदर खड़े रहते हैं, और ये धर्म करता के आदमी पब्लिक का बैंड बजाकर उनसे पैसे निचोड़ लेते हैं, अपने से नहीं होने वाला। एक काम करो, भगवान की मूर्ति को उठाकर किसी बरगद के पेड़ के नीचे रख दो, मैं वहां जाकर उनको दर्शन कर लूंगा, कोई जरूरत नहीं मंदिर बनाने की। चलो भाग यहां
से। ए तमीज से बात करो।
तुम इतनी बदतमीजी से मुझे तमीज सिखाने वाले कौन बदतमीज हो?
अरे इसको छोड़ो, जानते हो ये कौन है?
कौन है?
इस एरिया के MLA साहब है।
MLA? अरे रे रे रे, माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या है, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए ना, इसलिए आपकी शक्ल याद नहीं रही। कभी कभी भूले भटके इधर आ जाया करें तो शक्ल याद भी रहेगी। क्या है कि ईद का चांद तो फिर भी साल में एक मरतबा नजर आ जाता है, ये तो इलेक्शन का चांद है, 5 साल में एक मरतबा नजर आता है। पिछली बार जब ये यहाँ आए थे तो खद्दर का कुर्ता, खद्दर की धोती, दिन में 3 मरतबा इधर आते थे। अब ये 3 साल बाद लौटे हैं तो सिल्क का कुर्ता, सिल्क की धोती, गले में सोने का चेन। पहले ये प्लाईवुड की तरह पतले थे, अब ये सिल्क के कबाड़ की तरह मोटे हो गए।
ए मिस्टर, मुंह संभाल कर बात करो। अगर हमारी पार्टी के नौजवानों को ये पता चल गया कि शराफत लाल जी के साथ तुम इतनी बदतमीजी से पेश आ रहे हो तो खून की नदियां बह जाएंगी।
अरे जाजा, तुम लोग क्या खून की नदियां बहाओगे? 3 साल हो गए म्यूनसिपालिटी के नल में पानी तो बहा नहीं सके, खून की नदियां क्या खाक बहाओगे?
ये बात है, अभी बताते हैं।
अरे तुम लोग क्या बताते हैं?
वो पुलिस पकड़ के ले गई।
हाँ माँ, अपने इलाके के एमएलए साहब आए थे, पिताजी ने न जाने उन्हें क्या उटपटांग कह दिया, पुलिस और उन्हें पकड़ कर ले गई।
नहीं 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 नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं कोर्ट जाऊंगा और अगर वहाँ सुनवाई होगी तो हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, इंसाफ का तराजू हिला के रख दूंगा।
साहब एक मिनट मेरी बात तो सुनिए।
क्या सुनूं, सुनने को रह क्या गया है? आपने खाकी वर्दी और खाकी पतलून इसलिए पहनी है कि आप लोगों को भेड़ बकरियों की तरह लाकर अंदर बंद कर देंगे? अभी मैं आपको बताता हूं कि मैं कौन हूं। आप कमिश्नर साहब को फोन लगाइए, मुझे इससे बात करनी है।
साहब वहां तक जाने की क्या जरूरत है?
इंसाफ मांगने के लिए। कोई एमएलए सिल्क का धोती कुर्ता पहनकर यहां से यहां तक शॉल लटका कराएगा तो क्या आप उसके सामने नाचने लग जाएंगे? आपको पगार क्या एमएलए देता है? हम जो इनकम टैक्स भरते हैं ना, उससे आपको पगार मिलती है। और मिस्टर धर्म, क्या मैं पूछ सकता हूँ मुझे यहाँ क्यों लाया गया? और मेरी कमीज, ये मेरा खून पसीने की गाड़ी कमाई चलाई हुई कमीज, ये फट कैसी गई, इस पर गौर किया आपने? और मेरा खून जो 55 साल तक मैंने कतरा कतरा करके अपने शरीर में इकट्ठा किया, ये एक दिन में बह कैसे गया, इसकी जांच करवाई आपने? नहीं करवाई ना। रिगार्डिंग इंडियन पेनल कोड, तुम पका चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ।
देखिए साहब, हम आपको सिर्फ एक जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ लेकर आए हैं।
जानकारी? किस कसम की जानकारी? झगड़े की ना? झगड़ा तुम दो के बीच में हुआ था, मैं तो आ गया, वो दूसरा कहाँ है?
वो एमएलए है।
एमएलए? ओ, वो क्या अपने माँ के पेट से एमएलए पैदा हुआ था? और उसको एमएलए बनाया किसने? हमने, मेरे वोट ने बनाया। और तुम जनता के सेवक हो या एमएलए के सेवक हो? जवाब नहीं है ना, तुम पका चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ।
लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, आप है कौन साहब?
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उस अच्छे हिंदुस्तान का एक अच्छा नागरिक हूँ। लॉ अवॉइडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया, नाइदर एन एमएलए नॉर एन एमएलसी नॉर एन एमपी नाइदर एन मिनिस्टर। ये बहुत हाई लेवल की बात है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, तुम पंखा चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ।
लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपके पास कोई मंदिर का चंदा मांगने आए तो आप हाँ या ना कह दीजिए। इसमें यह कहने की क्या जरूरत है कि आप धोखेबाज हैं, लोगों का माल हड़प कर जाते हैं?
इट इज माई फंडामेंटल राइट। हिंदुस्तान आजाद हो चुका है और आजाद हिंदुस्तान के साथ मेरी जबान भी आजाद हो चुकी है, मुझे पूछने का पूरा हक। और अगर उन्होंने माल हड़प नहीं किया है तो उनसे कहिए कि साबित करके दिखाएं कि उन्होंने माल हड़प नहीं किया है। और साहब, मैं इतनी देर से यहाँ खड़ा हूँ, आपने मेरे बैठने का प्रबंध किया? नहीं किया ना? तुम पक्का चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ।
ये सब क्या हुआ?
अरे इन्होंने किसको बख्शा है जो मुझे छोड़ेंगे? आजादी से बड़े 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 नेताओं को अंदर करते रहे, आज मुझे अंदर कर रहे हैं। आज जुल्म और इंसाफ की जंग है।
लक्ष्मी जी, ये आपके पति हैं?
एक मिनट, आप इनको कैसे जानते हैं?
इसमें जानने की कौन सी बात है, जब भी हमारे घर में कोई त्यौहार या खुशी का मौका होता है, लक्ष्मी जी हमारे मेहमानों के लिए खाना पकाती हैं। लक्ष्मी जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप इनके साथ जिंदगी कैसे गुजार रही हैं। मैं तो 15 मिनट में अपने बाल रोशन लगाऊं। ले जाइए इनको, जाइए जाइए।
मैं जीप में जाके बैठता हूँ।
जीप में?
जाहिर बात है, जब आपको जरूरत होती तो लोगों को जीप में लाते हैं, जाते वक्त क्या पैदल भेजेंगे? मैं जीप में बैठता हूँ, ड्राइवर भेजिए।
इंस्पेक्टर साहब, अगर इन्होंने कोई गलत बात की हो तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ।
कोई बात नहीं लक्ष्मी जी, मैं तो सिर्फ आपके कारण इन्हें छोड़ रहा हूँ।
धन्यवाद।
हवलदार, कमिश्नर साहब का फोन आया तो बोल देना मैं यहाँ नहीं हूँ। और तुम पंखा चालू करो।
विश्व प्रताप ज्ञानदेव अग्निहोत्री। खाना खाया?
खाना खाया? अगर मैं ये कहूँ कि मैंने खाना खा लिया तो बिन खाए तुम्हारा पेट भर जाएगा, और अगर कहूँ कि नहीं खाया तो तुम खिलाओगे, और खाना खाने के बाद ये कहूँ कि नहीं खाया तो और खिलाओगे, और खाने के बाद ये कहूँ कि मजा नहीं आया तो पैसे दोगे, और पैसा लेके मैं खाना न कहूँ और ये कहूँ कि मैंने खाना खा लिया तो तुम मेरा क्या कर लोगे? बड़े आए पूछने वाले हो कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया।
लानत है मुझ पर जो आज के बाद विश्व प्रताप ज्ञानदेव अग्निहोत्री के भू लगत हो।
अरे आचार्य जी, कैसे हो?
मैं कोई दाव जाने वाला नहीं, मैं कभी भूल कर तुमसे पूछूंगा कि तुमने खाना खाया या नहीं। मेरी तौबा, मर जाओगे तो भी नहीं पूछूंगा।
अच्छा ये बताओ, कहाँ जा रहे हो?
पागल खाने।
क्यों?
डॉक्टर को देखने के लिए।
डॉक्टर क्या हुआ?
पागल हो गया।
पागल खाने में पागलों के पागलपने का इलाज करके उनका पागलपन दूर करने वाला डॉक्टर पागल? अगर डॉक्टर पागल हो गया तो पागल डॉक्टर के पास पागलखाने में जाके जो दूसरे पागल अपने पागलपने का इलाज कराएंगे उनका पागलपना घट जाएगा या पागलपना बढ़ जाएगा। अब ये कोई पागल जानता है या पागलों को पैदा करने वाला भगवान जानता है? पड़े आया पागलों से हमदर्दी दिखाने वाले।
ये बेड पर सोच लिया के इसके मुंह मत लग रहा तो क्यों लगा